ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
யம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்தந்தி திவ்யேஸ்தவே வேதைஷாங்கபதக்ரமோபநிஷதே காயந்தி அமஷாமகா த்யானாவஸ்தித்தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஷ்யாந்தன்ன விதூசுராசுரகணா தேவாய தஸ்மே நமஹ. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீ சரஸ்வதி வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரே. இந்திரியாணாம் அதிஷ்டாத்ரி பூதானாம் சாகிலேஷு யா பூதேஷு சததம் தஸ்யை வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நமஹ. வ்யாப்தி தேவ்யே நமோ நமஹ. ஓம் பத்ரம் நோ அபி வாதய மனஹ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஸ்ரீமன் நாராயண 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 ஸ்ரீமன்னா நாராயண நாராயண பஜ்மன் நாராயண 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 பஜ்மன் நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயண 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 ஸ்ரீமன் நாராயண சத்ய நாராயண 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 சத்ய நாராயண ஜல்தல் நாராயண 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 ஜல்தல் நாராயண 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 சப் ஜக் 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 நாராயண நாராயண நாராயண. போலியே சச்சிதானந்த பகவான் கீ, பகவான் கீ அசீம் அஹேது கீ கிருபா கே சாத் கல் வித்யா ஔர் அவித்யா ரூப் அவித்யா ரூபீ கர்ம் வித்யா ரூபீ உபாசனா இன் தோனோ கே ஊபர் விசார் கரதே ஹுவே வித்யா அவித்யா ரூபீ கர்ம கே சாத் ஜோ லோக் ஆசக்தி கரதே ஹேன் அத்வா ஜோ கர்மோ உபாசனா மே ஹி ஆசக்த ரஹகர் ஸ்வஸ்வரூப் கோ நஹி ஜானதே ஹேன் அர்த்தாத் ஸ்வபோத் ஆத்மஜான் கோ நஹி ப்ராப்த கரதே வஹ லோக் புனஹ இஸ் சன்சார் கே அந்தகார் கோரதம் அந்தகார் கோ ப்ராப்த ஹோதே. யஹ பாத் யோ வித்வானோ கே த்வாரா சம்ஜாயி ஜா ரஹி ஹை பதாயி ஜா ரஹி ஹை. உபநிஷத் கே இஸ் 12வே மந்திர கே த்வாரா தீன மந்திரோ மே कर्म और उपासना के विषय में बताया गया और तीन ही मंत्र संभूति और असंभूति के हैं। अंधतम प्रवशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय इवते तमो या उमा संभूत्यात्मरता। जो असंभूति की उपासना करते हैं वह घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो संभूति में रत रहते हैं मानो वह तो उससे भी अधिक अंधकार में रहते हैं। संभूति और असंभूति, असंभूति का अर्थ है यह जो कार्य रूप है, संभूति का अर्थ है कारण रूप। कार्य रूप प्रकृति जो कार्य के रूप में दिखाई पड़ रही है अर्थात दृश्यमान जितना भी दिखाई पड़ रहा है, व्यस्त ये शरीर हमें दिखाई देता है। असंभूति से अर्थ है व्यष्टि का और संभूति से अर्थ है जो अव्यक्त रूप है, व्यक्ता अव्यक्ता प्रकृति। कारण कार्य के भेद से कार्य रूप वृक्ष और कारण रूप बीज। इसी प्रकार जो कार्य रूप ये जगत है, कार्य रूप दृश्य है, जो दिन रात इस कार्य रूप में रत रहते हैं माने व्यष्टिक रूप से, जो शरीर को देखते हैं, निरंतर शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, वो शरीर के साथ साथ परिवार को नहीं देखते, समाज को नहीं देखते, राष्ट्र को नहीं देखते, जगत को नहीं, सारे विश्व को नहीं देखते, उन सब की उपेक्षा करके केवल उनसे व्यष्टि के परिवार की उपेक्षा होती है, समाज की उपेक्षा होती है, जाति की उपेक्षा होती है, देश की उपेक्षा होती है और इस प्रकार जाति देश सब की उपेक्षा करते हैं। केवल वह शरीर में रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्र को महत्व देते हैं, समाज को महत्व देते हैं, धर्म को महत्व देते हैं, आश्रम को महत्व देते हैं और शरीर की उपेक्षा करते हैं। शरीर से शरीर व्यष्टि रूप की उपेक्षा करते हैं। बोले यह जो दोनों चीजें हैं, जो व्यक्त रूप से ये प्रकृति है, व्यक्त रूप प्रकृति व्यष्टि के रूप में और समष्टि के रूप में, व्यष्टि और अंतर और बाहर के रूप में, यह जो व्यष्टि और समष्टि के रूप में संपूर्ण देश राष्ट्र जाति धर्म इस व्यापक रूप में भी हम देख रहे हैं और व्यष्टिक रूप में भी देख रहे हैं। जो व्यष्टि में है वही व्यष्टि व्यष्टि से समष्टि में बना, विशाल में बना, विशाल से विराट से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से विशाल रूप, ये जो कार्य रूप जगत है प्रकृति है और इसको ही कार्य रूप जगत को ही संभूति के असंभूति के रूप में उपनिषद बता रही है कि जो दिन रात इसी में लगे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, हमें तो किसी को बहुत लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें तो जाति की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, वो निरंतर इस जाति समाज वर्ण आश्रम कोई सामाजिक धर्म का पालन करता है, कोई राष्ट्रीय धर्म के पालन में, कोई जाति के देश के वर्ण के आश्रम के इन अन्य अन्य धर्मों के पालन में ऐसे लगे रहते हैं कि इसको ही सब कुछ मान करके इस कार्य रूप जगत को ही सब कुछ मान करके वो उसी की उपासना में दिन रात जो लगे रहते हैं, वह लोग स्व आत्मज्ञान के न होने के कारण वह भी अंधकार में रहते हैं। और उसके अतिरिक्त जिससे ये सब उत्पन्न हुआ, कारण रूप ब्रह्म जो कारण है, बोले संपूर्ण जगत का कारण कौन है? ईश्वर है। जो इसके कारण को पकड़ के रहते हैं और दिन रात जगत का जो कारण रूप है, उस कारण रूप ईषण करने वाले ईश्वर को जो सगुण रूप है, अर्थात इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो साकार की उपासना में लगे रहते हैं। साकार माने जो दिखता है, और उस साकार में की सेवा पूजा अर्चन में ही लगे रहते हैं। और कुछ लोगों के दिमाग में निराकार 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 निरंकार उसका ही एक धुन रट रहती है। कुछ साकार को पकड़ के रहते हैं और कुछ निराकार को पकड़ के रहते हैं। साकार को की उपासना करने वाले निराकार की उपेक्षा करते हैं। निराकार कुछ नहीं है, सब जो कुछ भी है साकार है। और कुछ लोग जो कुछ भी है वो निराकार ब्रह्म है, निराकार है, कारण है, इस निराकार की उपासना में लगे रहते हैं। इस प्रकार की संभूति और असंभूति, असंभूति माने साकार और संभूति माने निराकार, इन निराकार और साकार के ही झगड़े में पचड़े में निरंतर पड़े रहते हैं। वह लोग भी, उनके पास समय नहीं कि वो अपने स्वरूप को, अपने मैं को समझ सके। इसलिए जो तत्वज्ञानी, तत्व का जिज्ञासुवान है, जिज्ञासु है, उसे कभी साकार और निराकार के विवाद में या इनकी उपासना में अटकना नहीं है। अच्छा, कई लोग कहते हैं परमात्मा क्या है? बोले वो तो सरगुण है, साकार है। और सरगुण साकार है कुछ ऐसा आग्रह रखते हैं, और कुछ लोग ऐसा आग्रह रखते हैं कि वो निर्गुण है और निराकार है। तो हम ये समझें कि भगवान यदि निर्गुण उसे है बोले कैसा है? सगुण है को कुछ कहते हैं कि वो साकार है, और है को कुछ कहते हैं कि निराकार है, है को कुछ कहते हैं कि वो निराकार है, और कुछ कहते हैं कि है को कि वो साकार है। पर वास्तव में है वो साकार है या निराकार है? वो तो केवल है, वो न साकार है और न निराकार है। उस है का अनुभव है, उस है की अप्रोक्षानुभूति है। है का कोई आकार, इस साकार को सब कुछ मान करके जो कुछ भी है, जो दिखता है वही है, उस साकार रूप में ही लगे रहते, अर्थात कोई साकारों उपासना में और कोई निराकार की उपासना, निर्गुण निराकार की उपासना कर, निराकार निराकार के रूप में एक पिंडी ले लो, शिव पिंडी ले लो, शालिग्राम की पिंडी ले लो, शालिग्राम के रूप में कोई आकार तो नहीं है, और शिवलिंग के रूप में कोई आकार तो नहीं है, परंतु उसे बिना आकार के उसे आकारवान मानकर हम भगवान शिव के लिंग की पूजा करते हैं, तो उसमें हम यही भावना तो करते हैं कि ये प्रत्यक्ष शिव और पार्वती का स्वरूप है, उमा महेश सदाशिव है, सांब सदाशिव है, अम्बा सहित शिव है, ऐसी भावना करके हम उनकी पूजा करते हैं, उनको मस्तक लगा तिलक लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको साकार रूप परंतु उनको कुछ होते हुए भी नहीं, पर उसमें आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, उन सब नाक कान आंख का कारण क्या है? बोले ये लिंग ही तो है, ये लिंग में ही वो आकार छुपा हुआ है। तो कारण क्या हुआ लिंग, और उसका कार्य क्या हुआ उसका सगुण रूप। तो वो जो सगुण रूप है जिसमें नाक है, कान है, पांव है, सिर है, हाथ है, सब कुछ, सर्वेंद्रिय, वाक मन चक्षु सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, वो कार्य रूप है। इस प्रकार वो कार्य रूप प्रकृति कारण रूप ब्रह्म में, और कारण रूप कार्य रूप न दिखाई पड़ने पर भी कारण रूप से वो उपस्थित रहता है, और वह कारण होगा तो तभी कार्य होगा, यदि कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहां से होगा। और जो कारण कार्य को ही, जो इस कारण रूपी निराकार को और कार्य रूपी जगत को जान करके कार्य कारण की उपासना के साथ जुड़े हुए हैं, जो इसी को ही मान करके चलते हैं, परंतु आत्मा न कार्य है न कारण है, वो कार्य कारण से परे, वो कार्य और शून्यानाम शून्य साक्षी, वह उस दोनों का साक्षीभूत, कारण को भी जानने वाला और कार्य को भी जानने वाला, जो कारण भी पहचानता है और कार्य भी पहचानता है, कार्य कारण से परे जो आत्मसत्ता है, उस आत्मसत्ता की जो कारण कार्य से परे ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है, वह आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है। उपनिषद ये कहती है 12वें मंत्र के द्वारा, जो लोग केवल इसी को, कार्य रूप जगत को, और हमारी मति कहां अटकी रहती है, कभी हम सगुण को लेकर के, कभी निर्गुण को लेकर, कभी साकार को लेकर, कभी निराकार को लेकर, बड़े बड़े वाद विवाद हो जाते हैं ना। बहुतों का आग्रह रहता है परमात्मा साकार है, अच्छा हम उनकी बात से सहमत हो जाते हैं एक बात कि हमने मान लिया, जिन्होंने ये कहा कि परमात्मा साकार है, चलो हम उनसे सहमत हो गए परमात्मा साकार है, तब हमारे सामने एक प्रश्न रहता है कि निराकार क्या है फिर। परमात्मा यदि साकार ही है तब हमारे पास प्रश्न होगा कि फिर निराकार क्या है। अच्छा थोड़ी देर के लिए हम जो परमात्मा को कारण रूप जानते हैं, निराकार रूप में जानते हैं, तो तब हमारे सामने ये प्रश्न होगा, ये जो व्यक्त रूप दिखाई पड़ रहा है, ये जो कार्य रूप दिखाई दे रहा है, ये जो सब जो दिख रहा है, ये सब क्या है? शरीर सहित, शरीर से जो कुछ भी दिखाई पड़ने वाला है, अर्थात असंभूति क्या ये शरीर है? इस शरीर के साथ, इस शरीर के साथ ये सब परिवार, इस शरीर के साथ समाज, इस परिवार के, इस शरीर के साथ जाति, इस शरीर के साथ देश, धर्म, सब कुछ किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इस शरीर के साथ ये सब कुछ जो भी दिख रहा है हमें, सब का नाता क्या है? इस शरीर से। चलो हमने इसको ही समझ लिया कि भाई शरीर के साथ परिवार है, शरीर के साथ समाज है, शरीर के साथ जाति है, समाज के साथ राष्ट्र है, समाज के साथ धर्म है, इसको हमने समझ, कुछ लोग सामाजिक धर्म को ही धर्म मान करके, कुछ लोग राष्ट्रीय धर्म को ही धर्म मान करके, कुछ लोग इस सब को इसको ही सब कुछ मान करके समाज सेवा को, जाति सेवा को, धर्म राष्ट्र सेवा को बड़ा भारी महत्व देते हैं। बहुत अच्छी बात है। वो सागर सगुण इसी को, यही भगवान का रूप है। समाज भी भगवान का रूप है, जनता भी जनार्दन का रूप है। इसलिए राष्ट्र धर्म का पालन करो भाई, समाज के धर्म का पालन करो, देश के धर्म का पालन करो। इस प्रकार देश, धर्म, जाति, समाज इसका पालन करते हुए, इसी को मानते हुए कुछ लोग रह जाते हैं। परंतु इस सबको की उपासना करने वाले लोग भी किससे वंचित रह जाते हैं? बोले उस तत्व स्वरूप आत्मा के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? बोले इस सब की आपने उपासना की, कार्य रूप है, परंतु इसका फल क्या है? इस सब की सेवा का, इस सब के धर्म का पालन करने का, रक्षा करने का आपको फल मिला। बोले कुछ फल कर्म किए, ये सब किया आपने, इस कर्म का आपको फल मिलेगा, परंतु ये फल तो मृत्यु को प्राप्त करने वाला होगा। नारायण, कर्म का फल तो मृत्यु है, अंत में समाप्त होगी। तब इससे हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता, साकार की उपासना से। और अब आइए निराकार। कुछ लोग उस निराकार, जिस जगत का कारण, व्यष्टि का कारण कौन है? बोले वो ईश्वर है। इस सब का कारण कौन है? ईश्वर है, सब में वो है, वो निराकार है। उस कारण को मान करके ये कार्य रूप जगत कारण रूप ब्रह्म में, परमात्मा में विलय हो जाता है, ईश्वर में विलय हो जाता है। ईश्वर है, उसको और अपने को, उपासना और उपास्य का भेद, दोनों का अंतर दो रहेंगे। वो मेरा उपासक है, मैं उसका उपासक हूं, वो मेरा उपास्य है। मैं अंश हूं, मैं अंशी हूं, परंतु स्वरूप में, आत्मा में अंश अंशीगत भेद नहीं है। ये अंश अंशीगत जो भेद है, वह भेद भी आत्मा में, आत्मा के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्मा का अंश है। यदि हम अपने को अंश मानेंगे तो हम सब क्या होंगे? जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सब आत्माएं होंगी। परंतु आप लोग क्या कहते हैं? आप आत्माएं हैं या आत्मा हैं? कहते हैं नहीं, तो यदि हम अंशी कह समझेंगे तो जितनी इतनी आ इतनी क्या बैठे हैं? आत्माएं बैठी हुई हैं। तो अंश अंशी गत भेद नहीं है वहां। ईश्वर की, निराकार की सत्ता को आप स्वीकार कर, वो निराकार है और मैं साकार हूं, इस प्रकार वो मेरे उपासक हैं, उपास्य हैं, मैं उनका उपासक हूं। उपासक और उपास्य का भेद होगा, परंतु जहां ये अंतर होगा, ये भेद होगा, अंश अंशी का भेद होगा, तो वहां वह जो एक देवो सर्वभूतेषु आप कहते हैं, वो अखंड है, अच्छेद्य है, अभेद्य है, सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी के भेद में अंतर आ जाएगा, वो सर्वव्यापकता नहीं रहेगी। सर्वव्यापी के रूप में एक बात समझें कि हम यदि ये कहते हैं, बहुत से लोग ये आग्रह, बहुत से लोग ये बात रखते हैं कि देखो भगवान ना गर्भ में नहीं आते हैं, वो तो गर्भाभास कराते हैं, गर्भ में आने की जैसी लीला कराते हैं, देखो भगवान गर्भ के अंदर नहीं जाते। परंतु शांति से यदि आप सोचो कि भैया भगवान यदि गर्भ के अंदर नहीं जाते हैं, तो गर्भ के अंदर रहने वाला कौन है? वो गर्भ के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, उनमें यह ऊपर नीचे अंदर बाहर का उस आत्म स्वरूप में परमात्म सर्वव्यापी रूप में ये भेद नहीं। जहां ये भेद होगा तो वह सर्वव्यापक व्यापी नहीं होगा। इसलिए आत्मा सर्वव्यापी है। सपर्यागासु कर्माया आपको कहा कि वह सब में है, सर्वव्यापी है। इसलिए सर्वव्यापी में अंश और अंशी का भेद नहीं होता। तो उपनिषद हमें यही बताना चाहती है कि हमारा जो स्वरूप है मैं सर्वव्यापी, आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वगत है। इसलिए यह कारण कार्य के भेद से, कारण और साकार और निराकार से, व्यक्ता और अव्यक्त प्रकृति से, कार्य रूप जगत से, कारण रूप ईश्वर से, मूर्त रूप से अमूर्त रूप से, व्यक्ति से व्यष्टि से समष्टि से, वह अलग है। वो अलग है ऐसा कहने का अर्थ नहीं है कि वो बिल्कुल उससे अलग है, अर्थात वो सर्वगत है, सबके अंदर है। वो व्यक्त में भी है। अलग है का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो बस साक्षी का तो एक जगह से खड़ा हो गया। वो सब में, सबके अंदर एक समान व्यापक है। वह व्यक्त में भी है, अव्यक्त में भी है, वो व्यष्टि में भी है, वो समष्टि में भी है, वो कार्य में भी है, वो कारण में भी है, और वो सब में है। जो लोग केवल केवल कार्य रूप में ही समझते हैं, अथवा जो लोग केवल कारण रूप में ही समझते हैं, उसकी व्यापकता को नहीं समझते, वो केवल कार्य रूप को पकड़ के, कारण रूप को पकड़ करके, कार्य रूप जगत की अथवा कारण रूप ईश्वर की उपासना में, साकार की उपासना में अथवा निराकार की उपासना के साथ ही बधे रहते हैं, वह उस आत्म स्वरूप सर्वव्यापी जो अपनी अखंड